अब एक तो बात है कि पर्सनल बात है, नंबर एक बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ा कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती, क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुखधाम, दूसरे तरफ है सुखधाम। दुख के लहर की कोई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बना। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो ना, दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्च किया है खुशी के आगे? खर्च करने की वस्तु है क्या, है ही क्या जो देंगे? तो यह खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था सो पा लिया, पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उठ रहे हैं, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, तो क्या कहा बाबा ने? बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, और सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो खुश रहते हो या थोड़ी थोड़ी लहर आती है? दुख की परिस्थिति आने पर, दुख आने पर समय लंबा हो जाता है, कोई दुखी है तो रात कटती नहीं है, ऐसा लगता है पता नहीं खाट पर पड़ा पड़ा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सूरज का इंतजार करते रहते हैं। दुख समय को लंबा कर देता है और सुख की घड़ियां छोटी हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं कब समय चला गया। और जब दुखी रहता है व्यक्ति तो सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं, पर रात कटती नहीं है। और आनंद क्या करता है? समय को छोटा कर देता है। समय छोटा नहीं होता है, समय तो उतना ही है, घड़ी उतनी ही है, कैलेंडर वैसा ही चल रहा है, परंतु सुख की प्रतीति और दुख की प्रतीति होने लगती है, वो समय को क्षणिक या लंबा कर देता है। आनंद समय को मिटा देता है, आनंद समयातीत, कालातीत, समय से परे बियॉन्ड टाइम ले जाता है आत्मा को। परंतु जब दुख आता है, दुख की लहर आती है, तो ऐसा लगता है समय बहुत 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 लंबा हो गया है। इसके लिए शास्त्रों में लिखा है ना, अगर कोई पाप करोगे तो अनंत काल तक नरक में जाओगे, इटर्निटी। ये अनंत काल तक नरक क्या होता है? वो शायद एक क्षण भी हो नरक का, परंतु वो लंबा समय भासता है। बाबा ने जो कहा है धर्मराज के दंडे, वो सब क्या है? धर्मराज पुरी में सदा है, वो सब क्या है? वो तो रहेगा बहुत कम समय, बहुत होगा कम, परंतु उसकी जो प्रतीति है, उसकी जो महसूसता है, वो बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी। विदेश में एक दार्शनिक हुआ है बर्ट रसेल नाम का, बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, वो लिखता है कि मैंने जीवन में जितने भी पाप किए, अगर वो सारे ही मिला दिया जाए और कितना ही क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिक्ट न्यायाधीश हो, फिर भी मुझे ज्यादा से ज्यादा कुछ साल सजा मिलेगी बस। मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु अगर वो सारे भी मिला दिए जाए तो कुछ ही साल सजा मिलेगी। और उनके शास्त्र में लिखा है, जहां जीसस लिखता है क्राइस्ट, कि अनंत काल तक नर्क में जाओगे। इसका क्या अर्थ है? वो जो अनंत काल नर्क जो है, वो 1 सेकंड की बात है, कि वो 1 सेकंड में इतना दुख की महसूसता होगी, इतनी दुख की महसूसता होगी, कि आत्मा को वो छोटा सा समय भी बहुत लंबा प्रतीत होगा। जन्म जन्म के पाप और इस जन्म के पाप सारे मिलकर जो अनुभूति होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली होती है, तो खुश रहते हो कि थोड़ा थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। इसके लिए हमारे पुण्य का स्टॉक बहुत ज्यादा चाहिए। अगर छोटे छोटे भी पाप हो रहे हैं, तो खुशी कहीं ना कहीं गुम होती रही और दुख की अनुभूति होती रहेगी। अगर अंदर बहुत ज्यादा पुण्य का स्टॉक है, श्रेष्ठ चिंतन है, तो परिस्थितियां भले दुख लाने वाली है, वो केवल हिसाब किताब रूप में आएगी, हमें उससे प्रभावित नहीं करेगी, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ दुख धाम, दूसरे तरफ सुख धाम, तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, परंतु यह दुख हिसाब किताब के कारण आ रहा है, फिर भी हमारी स्थिति ऊपर रहेगी। लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करेगी। उदाहरण दे रहे बाबा, जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है, दुख तो आएगा, परंतु ये जो दुख है ये बाहर से आया हुआ है। कुछ कुछ दुख है जो अपने ही हमने क्रिएट किए हुए, हमने उनकी रचना की है। ये इस तरह की बाबा जिस दुख की बात कर रहे हैं, वो हिसाब किताब की वजह से हो सकता है, परंतु स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, अंदर हम अप्रभावित रहे, निरंतर अंदर में खुशी के संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान चिंतन है, तो दुख नहीं हो सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकराल हो, कैसी भी हो। इसके लिए क्या कहा जाता है कि न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, दुख है परंतु हम अप्रभावित, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने। जितना न्यारा बनते जाते हो, उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो परमात्मा प्यार का अनुभव करने का आधार क्या है? न्यारापन, डिटैचमेंट। जो जितना डिटैच है, अलग, न्यारा, पृथक, भिन्न, देह से और देह की जो भी दुनिया है उससे, दुख से न्यारा, देह से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा, देह की इच्छाएं वासनाएं प्राप्तियां, धर्म नाम, देह का नाम, देह का व्यवसाय, हर चीज से न्यारा। बाबा ने आज कहा ना, स्मृति का खेल है, स्विच इधर ऑन करो, इधर ऑफ करो, देह और देह की दुनिया समाप्त, स्मृति का स्विच इधर ऑन करो। बाबा कहने की भी आवश्यकता नहीं, केवल स्मृति में लाना बाबा, वो एटमिक एटमिक बॉम्ब है बाबा शब्द। खेल केवल ऑन ऑफ का है, देह और देह की दुनिया का स्विच ऑफ और इधर का स्मृति का स्विच ऑन, इतना अंतर है बस। तो देह और देह से न्यारा हो जाना। कई लोग कहते हैं कि योग नहीं लगता, वो योग क्यों नहीं लगता, क्योंकि डिटैच नहीं हो पाते देह से। सारा खेल ही डिटैचमेंट का, अपने आप को अलग करना, ये देह अलग, ये मैं अलग। सारे दिन भर अगर देह की स्मृति रहती है, देह को ही देखते हैं, देह की तरफ ही दृष्टि जाती है, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं है, तो शाम में योग नहीं होता है, ना ही दूसरे दिन होता है। तो सारा खेल किसका है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट का, अपने आप को देह से अलग करना, मैं अलग ये अलग। क्योंकि ये प्यार परमात्मा, जितना न्यारा बनते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे। चेकिंग कौन सी करनी है? कितना अटैचमेंट है, कितना डिटैचमेंट है, हर चीज से न्यारा। क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है, जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, यही समय है करने। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हो, और आपको अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया है। संसार के लोग क्या कुछ नहीं करते हैं खुशी को पाने के लिए। और बाबा ने कल क्या कहा, तुम्हारा ये एक एक पॉइंट और एक एक महावाक्य की कीमत कितनी है? लाखों की है और करोड़ों की है।
क्लब
खुशी क्लब, लाख
क्लब।
अगर हमें ऑप्शन दिए जाए, एक सूटकेस में 10 लाख रुपए ये चाहिए या ये ज्ञान की पॉइंट, परंतु बाबा ने कहा कि ये ज्ञान की पॉइंट का तुम स्वरूप बन जाओगे, ये ऑप्शन चाहिए या एक सूटकेस में 10 लाख रुपए, क्या लोगे? दोनों। अगर ये ले लेंगे तो वो कुछ नहीं है उसके सामने। उस ज्ञान की पॉइंट का क्या कहा बाबा ने? स्वरूप बन जाओगे, ये चाहिए या वो चाहिए। संसार में करोड़ों लोग हैं, लखपति करोड़पति, उनको नींद नहीं आती है, सारा पैसा है, परंतु नींद को खरीदा नहीं जा सकता है। बड़े बड़े फाइव स्टार होटल जैसे उनके मकान है, एसी है, बेड है, सब कुछ है, दवाइयां है नींद की, फिर भी नींद नहीं आती। और ब्राह्मण कितने निश्चिंत होकर सोते हैं, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ हुए ना। एक संकल्प है केवल, संतुष्ट रहना है बस। किसी ने खाली इतना संकल्प कर रखा है, मुझे संतुष्ट रहना है, और वो संकल्प का वो स्वरूप बन जाता है। खेल ही सारा संकल्प का है। उस दिन भी कहा ना, पुरुषार्थी और दो प्रकार की, जो पुरुषार्थी सुना है, अंतर क्या है? संकल्प का। वो सोचता है बाप दादा हमको चला रहे, दूसरा सोचता है हम चल रहे, हम सामना कर रहे, करना पड़ता है, ये एक प्रकार। केवल संकल्प का अंतर, किसी ने स्वीकार कर लिया कि मुझे संतुष्ट रहना है, ये संकल्प ही उसे निश्चिंत कर देता है, उसकी इच्छा को रोक देता है। उधर वो सोचता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और पैसा और पैसा और पैसा, और इतना धन आ जाता है कि फिर दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। एक नौकर रहता है, वो हमेशा देखता है उसका मालिक कभी सो ही नहीं पाता है, बड़ा दुख होता है हमेशा उसको जब भी देखता है। एक दिन उसका मालिक अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम पर कर देता है और चला जाता है कहीं, फिर अभी नौकर को नींद नहीं आती है रोज। उस दिन रात में एक चोर आता है और चोर सारा पैसा लेता है उसका, पर उसका जो कपड़ा होता है
वो कम पड़ता है बांधने के लिए, तो नौकर चुपके से देखते रहता है चोर को और उसको कहता है रुको एक मिनट। तो चोर जैसा ही देखता है कि ये जाके भागने की कोशिश करते हैं, उसको कहता है रुको रुको एक मिनट, अपनी शॉल देता है इसमें लपेट के ले जाओ ताकि मैं चैन से सो सकूं, क्योंकि इसी की वजह से ना तो मेरा मालिक सोया और ना तो मैं सो पाया हूं। तो लोगों को ऐसा लगता है ना, जितना ज्यादा पैसा हो उतना ज्यादा सुख, जितने बड़ा पद हो उतना बड़ा सुख, जितना मान सम्मान मिले उतना ज्यादा सुख, धन सुविधाएं और मान सम्मान, इसके पीछे सारे संसार के लोग रहते हैं। ना वो भी है। कोई सुख नहीं दे सकता है, ना पत्नी ना बच्चे और ना ही धन। तो सुख का तो साधन ही कुछ और है, कारण ही कुछ और है, हम सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, ये चीजों में सुख नहीं है। तो ये एक प्रश्न ये भी है कि हम यहां क्यों आए, क्या धन के लिए आए, क्या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आए, या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आए, कि हमको लगता है कि हमारी बहुत हमारा बहुत नाम हो जाए, क्या ये करने यहां आए थे, स्वयं को ये प्रश्न पूछो, या तपस्या करने आए थे। किसी भी योगी आत्मा को अल्पकाल का मान शान चाहे वो ले भी रहा हो परंतु अंदर से कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान मिल चुका है ये उसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ ही उसको तृप्त कर सकता है, चाहे वो कितना भी भागता रहे सारे दिन भर सम्मान के पीछे मान के पीछे धन के पीछे सुविधाओं के पीछे, परंतु वो उसे कभी तृप्त नहीं कर सकता है। भोजन के पीछे घूमने फिरने के पीछे जब तक आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं करती उसे संतुष्टता हो ही नहीं सकती। अंदर से दिल खाते रहेगा, भले वो दिखाते रहेगा ऊपर से कुछ और, परंतु अंदर से दिल खाते रहेगा, क्योंकि उसे पता है वो यहां क्यों आया था, परंतु अभी विस्मृति हो गई है सब छोड़ने के बाद। यहां आने के बाद अलबेलेपन की नींद और विस्मृति की नींद, इसमें सोने के बाद में हमेशा दिल खाते रहेगा कि मैं वो नहीं कर रहा हूं जो करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता। क्या प्राप्त करना है? अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख। कैसे मिलेगा वो? इंद्रिय सुखों से परे जाकर। इंद्रिय सुख जो है वो अल्पकाल की तृप्ति तो देते हैं जरूर, और आत्मा उसमें जकड़ी रहती है, छूट नहीं पाती है उससे, परंतु अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया हुआ सुख। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है, बहुत थोड़ा समय। तो थोड़े समय में कुछ अगर मिलना हो तो बीसों बीसों नाखूनों पर जोर लगा देना चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, ऐसा ये सुख है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो, अनुभव करना है लोगों, अनुभव। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हो और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्च किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यह खुशी के गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया ना, कि पाना है अभी पा लिया खा लिया, ये और बहुत कुछ खाना बाकी है, नई नई चीजें, ये बनाऊ वो बनाऊ, ये खाऊ वो खाऊ, इधर घूमो उधर घूमो, कश्मीर रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया है, सारा संसार यहां आ रहा है और हम यहां से संसार देखने जा रहे हैं।
देने
ब्राह्मण तो जो भी करते हैं ऊपर से नाम तो सेवा का ही होता है ना, ब्राह्मण बिना सेवा के तो कुछ करते ही, चाहे अंदर कोई भी इच्छा हो, परंतु ऊपर तो नाम सेवा, क्यों कर रहे हैं? सेवा अर्थ। हम जो भी खाते हैं उसका केवल 1/3 अपने लिए खाते हैं, 2/3 डॉक्टर के, समझ में है ना? यू ईट ओनली 1/3 ऑफ, 2/3 यू ईट फॉर डॉक्टर। योगी अर्थात अल्पाहारी, जितना हम खा रहे हैं उतनी जरूरत नहीं है देह को, वो हम डॉक्टर की कमाई के लिए खाते हैं, उसकी कमाई होती है ना फिर। तो योगी अर्थात संयम, जिसने अपने आप को संयम में बांध रखा है, नियमों में बांध रखा है, वही खुश है। भोग का जो मार्ग है उसमें दुख ही दुख है, अल्पकाल का सुख है परंतु बाद में दुख ही दुख है। पा लिया ना, तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं, दूसरों को यह खुशी बांटते जाओ। कल कहा ना, सबसे श्रेष्ठ दान तीन दानों में से गुणों का दान करना। पहला दान मनसा से शक्तियां यथाशक्ति करते हैं, वाचा से ज्ञान तो हरेक करता है, ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा दान, वो भी बहुत श्रेष्ठ दान है वाचा से दान करना। और सबसे कम करने वाला दान कौन सा है? गुणों का दान। गुणों की लिस्ट है ना लगी हुई 36 गुण, उसमें से देखो इन 36 में से मुझ में कितने हैं और कितने नहीं है। 50% है तो छोड़ दो, 50% से भी जो कम है 10% ही है, तो उस पर थोड़ा फिर काम करना पड़ेगा। तो वो गुण का हम जब स्वरूप बनेंगे तो ऑटोमेटिक वो, जैसे खुशी है, खुशी भी एक ले लो गुण के रूप में, अगर हम खुश है तो स्वतः ही वो फैलेगी सब वातावरण में। तो दूसरों को यह खुशी बांटते जाओ, जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। त्याग की महसूसता करो, किसकी महसूसता हो? भाग्य की महसूसता। संडे मुरली में था पुरुषार्थ इतना सहज हो कि मेहनत की महसूसता नहीं, मेहनत की लकीरें नहीं, भाग्य की लकीरें, प्राप्ति की लकीरें। लोग कहे कि इनका बहुत बड़ा भाग्य है, और जब वो ऐसे गीत गाएंगे तो एक सेकंड में उनके भाग्य का द्वार खुल जाएगा, एक सेकंड में भाग्यशाली वो भी बन जाएंगे, ऐसा होगा। तो क्या अनुभव करे दुनिया वाले, इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, ऐसा ना लगे कि अरे बाप कितना बड़ा त्याग करके आ गए आप लोग, यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं है, बीवी बच्चे कोई नहीं है और अकेले रहते हो, खालीपन नहीं लगता जीवन में? ये ना लगे उनको, चलो भले ही यहाँ सुविधा मिल रही है पर तो आपको कुछ तो खालीपन लगता होगा, ऐसा ना लगे उनको। उनको क्या लगे कि वाह सब झंझटों से मुक्त हो आप, तो श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। दुनिया में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुखदान है दुनिया, आपके पास हर समय की खुशी। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। बहुत पैसे दे देना पुण्य नहीं, स्थूल दान करना पुण्य नहीं। कौन सा दान? सबसे बड़ा दान है खुशी का, महादान, सबसे श्रेष्ठ दान है। आज बाबा ने बहुत अच्छा वाक्य कहा, अगर किसी के तकदीर में है तो कमरे में ही क्या कर दो, सत्संग खोल दो। अगर किसी की तकदीर में होगा तो कमरे में ही सत्संग खोल देगा, यही सत्संग है, बाकी सब झूठ संग है। तो सत्संग खोलो और चालू कर दो खुशी बांटना, तो सभी निर्विघ्न बन आगे बढ़ रहे हो, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। बाबा विघ्नों की बात कर रहे हैं, विघ्नों का काम है आना, विघ्न आने चाहिए ना कि नहीं आने चाहिए? वो भी है और भी बहुत सारे काम है, विघ्नों के तो आना ही चाहिए। विघ्न मजबूत बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, चेकिंग भी हो जाती है कितने पानी में है। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, बड़े समान दूसरों को और स्वयं को सुना रहे थे कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, तो विघ्न आने के बाद पता चलता है। ये ज्ञान अर्थात यहाँ स्वरूप बनना है प्रैक्टिकल, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे ग्रंथ जैसे किसी गधे पर लाद दिए जाते हैं तो क्या गधा ज्ञानी बन जाता है क्या? बहुत सारी मुरलियां हमने याद रखी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो पेपर है वो कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है, एनी टाइम। ये यूनिवर्सिटी का पेपर का ये नियम है, आधी रात को भी पेपर हो सकता है। सुबह क्लास कराई या सुनी, सहन शक्ति सहन शक्ति सहन शक्ति, सारे दिन भर वर्कशॉप किया और शाम में ही पेपर आ जाए और फेल। वो दिखाया ना पांडवों को, उनके गुरु द्रोणाचार्य उनको पाठ पढ़ाते कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है, जाओ पाठ पढ़ के आओ। तो सब लोग पढ़ के आते हैं, सब पाठ सुना, समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आता है। पर युधिष्ठिर कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया। तो बोलते ठीक है, कल समझ समझा के आ जाना। तो दूसरे दिन पाठ पक्का किया, नहीं अभी भी नहीं समझ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, वो इसको द्रोणाचार्य को इतना क्रोध आ जाता है, 1 महीना इतना सिंपल पार्ट पढ़ने को तुम्हें 1 महीना लगता है, और इतना क्रोधित होता है, क्रोधित होता है, बोलता है गुरु जी आपको ये तो पक्का नहीं हुआ तो मुझे कहां से होगा, ये पार्ट कोई, ये तो जीवन है ना, ये कोई याद करने की बात ही नहीं है। मुरली अर्थात स्वरूप, उसका स्वरूप कौन कितना बना है, प्रैक्टिकल में कितना है, जीवन में कर्मों में वो झलकना चाहिए, तो ही कहेंगे ये अध्यात्म। योगी जीवन है, बैठकर योग करना अलग बात है, वो आप अपने विकर्मों से विनाश कर रहे हो जो भी है, परंतु ये तो जीवन है, होल लाइफ। यहाँ 2 बज के आप वो 2 बजे आके योग करो, जो करना है करो, पर सारे दिन भर झगड़े, उसका क्या मतलब है? जिसके भी साथ जाओ अनबन, कुछ ना कुछ होते रहता है कर्मों में, झगड़ा या फिर आलस्य अलबेलापन या सुस्ती या जो भी है, गलतियां हो रही है बहुत सारी। योगी जीवन, योग योगी कर्मसु कौशलम, हमारे कर्मों में वो झलकना चाहिए, कर्म एक्यूरेट होने चाहिए हमारे। आज बाबा ने कहा शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म, जो होता है तुमको शुद्ध कर्म करने, अशुद्ध नहीं। कल कहा था राइट कार्य करना, बुरे संकल्प आए तो उसे रोकना है, उसे अच्छे बुरे दोनों आएंगे, तो कौन कितना रोक सकता है, कौन कितने राइट कर्म करता है। आज का अशुद्ध संकल्प अशुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म, स्वच्छ बुद्धि म्लेच्छ बुद्धि, हंस बबुला, सगे लगे, अलग अलग वाक्य है मुरली में। तो हमारा जो पूरा ज्ञान है वो दिखना चाहिए, मतलब हम ऐसा सोचे हम अज्ञानियों के सामने हैं, वो अज्ञानी वहां दिखाने की जरूरत नहीं कि हम इस ज्ञान में हैं, वो देखकर लगे उनको कि जरूर ये कोई आध्यात्मिक पुरुष है, जरूर कोई ना कोई साधना कर रहा है, बिना उनको ये पता चले कि किसी संस्था से है, बस देख कर ही लगे, तब कहेंगे कि रियल ज्ञानी है, नहीं तो वो एक दिखावा मात्र है बस। जहां हमको बताना पड़ता है, कल भी उस दिन कब तक परिचय देते रहोगे खुद का, हम इसमें हैं हम इसमें, वो बताने की जरूरत ना पड़े। तो विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना, तो विघ्न आने चाहिए, आह्वान नहीं करो परंतु आने आएंगे तो और शक्तिशाली बनेंगे। ये जिम्नाशियम है, ये दुनिया जो है ये जिम्नाशियम है, जहां हम अपने आप को, वेयर वी हैव कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। विवेकानंद ने कहा है द वर्ल्ड इज अ जिम्नाशियम वेयर वी हैव कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। जिम्नाशियम को क्या कहते हैं? अखाड़ा। ये दुनिया एक अखाड़ा है जहां पर हम अपने आप को पहलवान बनाने आए हैं, शक्तिशाली बनाने आए हैं। तो जितने ज्यादा पहलवानों के साथ हम कुश्ती करेंगे, लड़ाई करेंगे, उतना हम और शक्तिशाली बनेंगे, तो आने चाहिए। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, विघ्न बहुत सुचारू रूप से बहुत ही एक्यूरेट रीति से आते हैं, टाइम पर आते हैं और बराबर देखते हैं किस समय विघ्न आना चाहिए, वो टाइम भी अपना निश्चित करते हैं। वो देखते हैं अमृत वेला तो आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, मुरली में भी चांस नहीं दिख रहा है, वो देखता है कर्म में, हाँ ये पॉइंट है, जब कुछ ऐसी परिस्थिति सामने आती है तब इसे क्रोध आ सकता है, तब वो प्रवेश करता है और फिर कुछ ना कुछ गलतियां वहां करता है, वो मौका अवसर देखता है, मौका देख के चौका मारता है। अच्छा, मतलब विघ्न जब अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। चाहे कोई भी विघ्न आए, संकल्प रखना है कि हम सफल ही रहेंगे। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, तो दो बातें सुनी, एक तो खुशी, खुशी हमारा अपना खजाना है, हमारे खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना हो। कहां रखोगे अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल? दूसरे के हाथ में, उसने बटन दबाया तो खुश, बटन दबाया दुखी, तीसरा बटन दबाया आंसू, चौथा बटन दबाया आंसू बंद, सारे बटन थे उसमें और वो दूसरे के हाथ में है। टिंग टिंग टिंग, यहां से कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो खुशी अविनाशी खजाना है, हमारा अपना खजाना है, निजी खजाना है, और ये खजाना कैसे बढ़ेगा? बांटने। अच्छा चलो, हम दुखी भी हैं तो फिर भी खुश करना, तो हम खुश हो जाएंगे उसमें, उस प्रोसेस में। कल हम चर्चा कर रहे थे क्लास में कि दुखी होने के बाद क्या करें, तो कईयों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए। जब एक तो स्थूल सेवा करो, या तो किसी को ज्ञान समझाओ, 7 दिन का कोर्स कराओ, या कहीं घूमने चले जाओ, या कहीं लिखना चालू करो। और एक बहन ने तो बहुत अच्छा कहा, अपने कमरे की सफाई चालू कर दो, जो अलमारी है इसमें बहुत सामान जो पड़ा है सारा नीचे है, और फिर वापस एक एक लगाना चालू कर दो, बजाय इसके कि व्यर्थ संकल्प करते बैठे रहे। अपने आप को किसी भी विधि से अगर नीचे अवस्था जाती है तो कुछ भी करके उसको ऊपर लाना, या तो किसी सत्संग में चले जाओ कि जहां पर पुण्य आत्माओं का संग से, उनके वाइब्रेशन से स्थिति ऊपर, या तो कोई क्लास सुनो। अलग अलग चीजें कर सकते हो, घूमने निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कोई एक इंग्लिश की किताब है जिसमें एक ऑथर है, मैंने ऑथर का नाम भूल गया, वो एक बार उसका घर में झगड़ा हो गया माँ बाप से, उसने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और क्या करा, वॉकिंग पर चला गया, करते गया करते गया करते गया, 1 किलोमीटर, 2, 5, 6, 7 किलोमीटर चल ही रहा है, चल ही रहा है, घर छोड़कर चला गया। और फिर चलते चलते वो इतना फ्रेश हो गया कि सोच रहा है फिर गलती तो मेरी है, मैं उनको क्यों डांट रहा था। ये वॉकिंग के फायदे में, फायदे बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग डॉक्टर गिरीश पटेल जी ने अपने क्लास में कभी सुनाया था ये कहानी, कि वो वॉकिंग करता गया और फिर सोचने, अरे गलती तो मेरी है और मैं ही उनको डांट रहा हूं, वो वापस होता है। तो वॉकिंग करने से बुद्धि खुलती है, इसकी वजह कि हम अपने रूम में बैठे रहे और खुशी की पॉइंट ढूंढते रहे, मुरलियां ढूंढते रहे, उसको बाजू में रखो, क्लास तो नो, या तो फिर लॉन्ग वॉक, मुरलियों के लिए बाबा ने कहा 6 किलोमीटर भी जाना है तुमको आज, तो ऐसा बहाना नहीं दे सकते कि बहुत सेंटर दूर है, वो भी एक है कि पैदल निकल जाओ वहां से, यहां आने के बजाय यहां से पीछे के रास्ते से निकलो ओम शांति भवन तक पहुंचने के लिए। पांडव भवन के पीछे का रास्ता है, उधर से उधर से उधर से पोलो ग्राउंड करते करते 6 बजे निकलो तो 7 बजे तक खुशी हो जाएगी, हो सकता है ना। बाबा ने आज कितना 6 किलोमीटर कहा चिमन भाई, 6 किलोमीटर का है ना कि 10 का, 6 घंटा का, सॉरी, कोई बहाना नहीं दे सकता, 6 घंटा भी सेंटर दूर है तो चलो निकलो, कोई परवाह नहीं। तो उससे फायदे बहुत है, 6 घंटे में दुख खुशी में परिवर्तन हो जाएगा। वॉकिंग करने के बाद अगर कुछ सुना जाता है तो बुद्धि फ्रेश रहती है, वो तुरंत ग्रास्प करता है, नहीं तो बस ऐसे बैठे मुरली में, मुरली चल रही है, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर लिखा, बुक बाजू में रखा, फिर धारणा के लिए लिखा, वरदान लिखा, स्लोगन लिखा और खलास। बहुत ही बढ़िया थी, क्या थी, बहुत बढ़िया। आज वो बहन जो नई आई थी ना, उसने तो बहुत अच्छी मुरली सुनाई, उसको रोज आना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा क्या था वो मत पूछो बस क्या था वो मत पूछो, कितनी पॉइंट्स थी कुछ पता नहीं। तो वो पॉइंट को वहां से उठाना है, एक एक ऐसे ऐसे उठाना है, पिकअप, और अपनी बास्केट में डालना है, एक एक उसको याद करना है, ताकि खुशी की पॉइंट बुद्धि में हो तो खुशी रहेगी, पॉइंट से ज्ञान ही बुद्धि में नहीं तो कहां से खुशी रहेगी, फिर तो दुख के संकल्प आ जाएंगे सर। अच्छा, और दूसरी बात थी विघ्नों के बारे में। तो विघ्न अपना काम एक्यूरेट करते हैं, तो हम भी अपने सफल होने का कार्य एक्यूरेट करें।